आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखो, आप अपने डिग्निटी को मेंटेन करके रखो, आप प्रैक्टिकल हो पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग लॉस टू समवन एल्स। कोई भी इस पूरी सृष्टि में मदद करने के लिए मना नहीं करता, पर हम कभी मदद मांगते ही नहीं।
बिल्कुल।
तो इमोशनल इंटेलिजेंस का ये भी एक प्लेटफॉर्म है कि अगर हम में कोई कमी है तो उस कमी को एक्सेप्ट करने में घबराना, हिचकिचाना या शर्माना नहीं चाहिए। एम्पैथी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बॉस को ही अपनी टीम को समझना है, टीम को भी अपने लीडर को समझना है। हनी सिंह कुछ टाइम के लिए बहुत प्रॉब्लम में रहे इन सब इश्यूज, मेंटल इश्यूज की वजह से, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को उस ईगो स्टेट में फील करते थे कि मैं राजा हूँ। मतलब तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक इमोशनली स्ट्रांग इंसान के है, गलती एक्सेप्ट करना, अपनी गलती को समझते हुए आगे बढ़ना, उसके बाद हम्बल और काम रहना कितने भी सक्सेसफुल होने के बाद।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट पे। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यस, अगेन मैं कहूँगी इंटरेस्टिंग टॉपिक, द पावर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जिसके बारे में आज हमसे बात करने के लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद है, डॉक्टर प्रेरणा दावर जी, जो कि द गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की डायरेक्टर ट्रेनी है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
गुड मॉर्निंग, और आज की सुखद सुबह और आपके स्टूडियो के प्लेटफॉर्म पे आके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी 22 साल की एकेडमिक जर्नी है और पढ़ाई के साथ साथ मैं काउंसलिंग, कॉरपोरेट ट्रेनिंग और लाइफ कोच का रोल भी प्ले कर रही हूँ इस सोसाइटी के लिए।
तो मैम स्टार्ट अगर करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है, इसे थोड़ा डिफाइन करें, क्योंकि अवेयरनेस जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग इसे इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं।
तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक इंसान की सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल और रेगुलेशन और एम्पैथेटिक बिहेवियर के बारे में बात करता है। तो एक इंसान को पर्सनल फ्रंट पे फैमिली के साथ डील करना है, तो आपको अगर अच्छे रिलेशनशिप अपने परिवार में बनाने हैं तो आपको अपनी और सामने वाले की इमोशंस को समझना ही समझना है। आपको अगर जॉब में कॉरपोरेट सेक्टर में काम करना है तो आपको अपने अपने बॉस और अपनी टीम के इमोशंस को समझना आना चाहिए, तभी आप एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ
काम कर पाओगे
और काम करते करते आप एक डिफरेंस और एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे।
बिल्कुल। तो मैम जैसे आपने कहा कि फैमिली, तो फैमिली में क्या रोल होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल होता है?
इमोशनल इंटेलिजेंस एक इंसान को कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, अच्छी रिलेशनशिप बिल्डिंग में और अच्छी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है। तो अगर समझने की बात, अब शुरुआत हम फैमिली से कर रहे हैं, तो फैमिली फ्रंट पे आप देखिए कि एक साइकिल के दो पहिए होते हैं, राइट? एक पहिया वाइफ है तो दूसरा पहिया हस्बैंड है, राइट? और साइकिल तभी बैलेंस्ड होकर चलती है जब दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, और वो साथ देने का मतलब सिर्फ साथ चलना नहीं है, एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ना है, जो कि धीरे धीरे हमारी सोसाइटी से बहुत पीछे जाता जा रहा है। वो अंडरस्टैंडिंग, वो सेक्रीफाइस, वो समर्पण, राइट? ये शब्द ही रह गए हैं, जबकि अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में डिवोर्स और सेपरेशन के जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है। शादी अभी हुए हुए कुछ समय होता है और 5 से 6 महीने में ही लोगों को लगने लग जाता है कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है, जबकि आप अगर 20 साल पहले का इरा या 30 साल पहले के इरा को देखिए, या हम अपनी मदर्स की बात करें या दादी माँ की बात करें, तो उनके टाइम पे शादी होने का मतलब होता था कि
लाइफ
का एक बदलाव, और वो ऐसा बदलाव है जो परमात्मा ने डिसाइड किया है, और जो डिसीजन परमात्मा की तरफ से हो गया हमें उसका शुक्राना करते हुए उसे जीवन भर चलाना है, अपना सर्वस्व देके। पहले वाले समय में फीमेल्स कभी सोचती नहीं थी कि ये मेरा काम है या नहीं है। आज काम के बंटने की बात होने लग गई कि मैं भी काम करती हूँ तो ये काम घर का भी, आपको वो बुराई नहीं है उसमें, जब दो लोग इकट्ठे, पर उसको परमात्मा ने दो प्लेटफॉर्म, दो तरीके के अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ बनाए, फीमेल को घर को नर्चर करने के लिए बनाया, तो पुरुष को अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए बनाया। कोई बुराई नहीं है जब फीमेल काम कर रही है, मैं भी पिछले 22 साल से वर्किंग हूँ, बट अपने वर्किंग होने की वजह से अपने घर के प्लेटफॉर्म को कभी भी कॉम्प्रोमाइज करना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे ही एक मेल का अगर वो काम कर रहा है, तो फीमेल को अगर डोमेस्टिक हेल्प में उसके हेल्प की ज़रूरत है, तो कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये फीमेल का काम है, ये तो तुझे ही करना है। तो अगर फीमेल ये समझने लग जाए कि मेरी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और मेल ये समझने लग जाए कि घर का काम भी हम मिलके कर सकते हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारी कन्फ्यूजन्स तो वहीं ख़त्म हो जाती हैं। और वो कैसे होगा जब हम एक दूसरे की इमोशंस को समझेंगे, जब हम एक दूसरे के साथ एम्पैथेटिक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, जिसमें एम्पैथी का मतलब है दूसरे को समझना उसकी सिचुएशन में। अगर मान लीजिए हस्बैंड किसी बात को लेके गुस्सा है बहुत ज़्यादा, और फीमेल उस टाइम पे कुछ रिएक्ट ना करे, उसको समझ आ जाए कि अभी ऐसा राइट टाइम नहीं है अपनी बात को रखने का। मैं ये नहीं कहती कि अपनी बात मत रखो,
लेट वेट करो सिचुएशन के अकॉर्डिंग।
एक समय है, उस समय थोड़ा सा चुप रह के ये समझ लो कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, तभी इतना गुस्सा आ रहा है तो परिवार का ही हिस्सा, राइट। और कुछ समय बाद अपनी बात रखें, तो शायद जो झगड़ा विकराल रूप लेता है वो कंट्रोल हो सकता है।
देखो, बातचीत करने का जो तरीका होता है, आप किस टाइम किस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड जैसे आप कह रहे हैं, तो मतलब फैमिली में इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जहां तक मैम आज के टाइम में मैं देखती हूँ ना, कि हमारा नहीं रह गया, हम हो गया, मतलब आपसे मैं हो गया कि सिर्फ मैं हूँ, ठीक है। लोग एक दूसरे को लेकर चलना पसंद नहीं करते, जहाँ हूँ मैं हूँ, मेरे सपने हैं, मेरे अपने हैं, और लोग दूसरे के बारे में कम सोच रहे हैं, लोग सेल्फिश ज्यादा होते जा रहे हैं, शायद ये भी एक रीजन है।
देखिए, सेल्फिश होना भी बुरा नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है हर चीज में, और अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ के चली जाएगी, इससे नकारा नहीं जा सकता। और हम सबको पता कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड है, तो हम पॉपुलेशन में अगर नंबर वन हुआ है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन हर सिटीजन के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए बड़ा है। कंपटीशन बढ़ा है तो स्ट्रगल भी बढ़ी है, और स्ट्रगल बढ़ी है तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली बात आती है, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जब रेस है तो हर इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा। पर प्रैक्टिकल होने के साथ साथ अपने जो बिगर गोल है, पर्पस ऑफ लाइफ है, उसको इंसान को नहीं भूलना चाहिए। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखो, आप अपने डिग्निटी को मेंटेन करके रखो, आप प्रैक्टिकल हो पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग लॉस टू समवन एल्स।
बिल्कुल।
तो आप अपने लिए जितना, मैं सिंपल सी बात मानती हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में कोशिश करती हूँ, जो मुझे किसी और से चाहिए वो मुझे अपने आप से शुरू करना है। अगर मुझे आपसे प्यार चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता मैं आपको गुस्सा करूँ और आप मुझे प्यार करो, ऐसा नहीं होगा। प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ेगा।
बिल्कुल।
जो चीज हम बोएंगे वही हम काटेंगे।
Exactly.
तो कहीं ना कहीं एक कोई भी इस पूरी सृष्टि में मदद करने के लिए मना नहीं करता, पर हम कभी मदद मांगते ही नहीं है।
बिल्कुल।
तो इमोशनल इंटेलिजेंस का ये भी एक प्लेटफॉर्म है कि अगर हम में कोई कमी है तो उस कमी को एक्सेप्ट करने में घबराना, हिचकिचाना या शर्माना नहीं चाहिए।
बिल्कुल।
सामने वाली दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाथ बढ़ा के आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं, बस हमें एक्सेप्ट करना है कि आई एम नॉट गुड इन, क्योंकि आप मास्टर ऑफ ऑल नहीं हो सकते।
बिल्कुल।
राइट। आप एक चीज के मास्टर हो, कोई और जमाना आज की डेट में अगर हम कॉम्पीट करते रह गए तो शायद हम सब अपना वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। तो कोलैबोरेशन करके तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और मुझे लगता है जो जो प्लेटफॉर्म आज की डेट में कोलैब कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, वो सभी आगे बढ़ रहे हैं, और ये समझने की जरूरत है।
मैम, कोई एग्जाम्पल के साथ आप इस चीज को समझा सकती है?
बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मुझे लगता है दिनचर्या की, दिन की शुरुआत से लेकर कई सालों के एग्जाम्पल्स अगर हम लें तो आप खुद सोचिए, अगर एक मैं जैसे एक डिपार्टमेंट को एज अ डीन लीड करती रही हूँ, और अगर मैं प्रोफेशनल फ्रंट की बात करूं तो एक लीडर तभी अपना बेस्ट दे पाता है जब वो अपनी इमोशंस को अपनी टीम को समझा पाए और टीम की इमोशंस को समझते हुए अपने सीनियर्स को वो बात उनके रख पाए कि उनको क्या हमसे एक्सपेक्टेशन है और हमें उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है. अगर ये भी क्लियरली हम उनको बता पाए एम्पैथेटिकली. एम्पैथी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बॉस को ही अपनी टीम को समझना है, टीम को भी अपने लीडर को समझना है. बॉस तो आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता. मैं मानती हूँ कि विन विन सिचुएशन है और रिस्पेक्ट मन से होनी चाहिए. तो अगर दोनों एक दूसरे के प्लेटफॉर्म को समझते हैं तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जिसमें बहुत सारी एनर्जी एफर्ट टाइम लगता है संस्थाओं का, एचआर रोल के इतने लोग सिर्फ ग्रीवेंस हैंडल करते हैं क्योंकि मेंटल स्टेट हेल्दी नहीं है, ग्रोथ माइंडसेट के साथ लोग काम नहीं कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने वर्कप्लेस पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं. अगर इन सब चीजों को अप्लाई किया जाए और कारगर किया जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेस स्टोरी हो सकती है और कोई भी टीम एक परफेक्ट टीम और बेस्ट टीम हो सकती है क्योंकि हर किसी को अपना रोल पता है, उसके चैलेंजेस पता है, अपनी लिमिटेशन पता है और सामने वाले की लिमिटेशन भी पता है. तो आप फॉर एग्जाम्पल मेरे कलीग के साथ कुछ मतभेद हो गया, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद तो होता रहता है क्योंकि हर किसी का अपना थॉट प्रोसेस है. तो सामने वाला इंसान जब बहुत एग्रेसिव हो रहा था तो उस समय मैंने कामली ये समझने की कोशिश की कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है. और जब आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझते हो, कई बार हम एम्प्लॉयज को लगता है कि हमारे जो सीनियर्स हैं, ऑनर्स हैं, मालिक हैं, वो बहुत डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, उनको तो हमारी बात समझ नहीं आती. ऐसा नहीं है. आप खुद सोचिए ना, दे आर पेइंग अस. आप किसी को अगर अपने घर पे होम हेल्प के लिए रखते हो तो आप उसको क्या उस नजरिए से नहीं देखते हो. हमारे ऑनर्स और या हमारी टीम या हमारे सीनियर्स तो हमें फिर भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं. तो सिर्फ एक नज़रिया है. उस मोमेंट पे मुझे थोड़ा सा बुरा तो देखो हर इंसान को लगता है, बट उस मोमेंट पे कामली मैंने सोच समझने की कोशिश की अगर सामने वाला मेरा कलीग ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव है उसका और कहीं ना कहीं उसके एंड पे आके अगर मैं बात समझूंगी तो शायद वो सही होंगे. राइट, बस इतना सा किया और कई साल पहले का इंसिडेंस है. आज की डेट में हम लोग विन विन सिचुएशन पे काम करते हैं, हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझते हुए. और ऐसा ही परिवार में नई शादी होती है, दो इंडिविजुअल अलग अलग बैकग्राउंड के अलग अलग अपब्रिंगिंग के एक होते हैं, दो परिवार एक होते हैं, तो हर किसी का अपना ब्रॉट अप करने का तरीका है तो वैसे संस्कार बन जाते हैं. तो दो लोग अलग अलग संस्कारों के आएंगे तो अलग अलग माइंड सेट होगा. तो अगर दोनों इस चीज को समझें और दोनों इस चीज को थोड़ा समय दें, हम समय नहीं देते आजकल की जनरेशन को, हर चीज इंस्टेंट चाहिए,
टाइम नहीं देना
डिलीवरी होम डिलीवरी करानी है तो इतने टाइम में होनी चाहिए. राइट,
बेसिकली अगर रिलेशनशिप्स की बात करें मैम तो आपके अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो आपको एटलीस्ट 2 साल तो लग जाता है एक दूसरे को पूरी तरीके से समझने में.
समय तो देना ही पड़ता है. बाकी दुनिया में ये भी कहा जाता है लव एट फर्स्ट साइट होता है, बट हाँ लव में और उस लव के थ्रू एक घर को बनाने में समय लगता है. और अगर हम इमोशनली एक दूसरे की इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की इमोशन के बारे में अवेयर रहते हैं, एक दूसरे की इमोशंस की रेगुलेट या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते,
बहुत बड़ी चीज है.
क्योंकि मुझे लगता है हम बाकी पर्सपेक्टिव तो भूल जाते हैं कि हमें किसी को समझना है, रिस्पेक्ट देनी है. हमें कंट्रोल करने वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता है. एक फीमेल को अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने की इच्छा रहती है तो हस्बैंड को फीमेल को और दोनों एक ऐसी ईगो स्टेट में आ जाते हैं
कि मैं अपनी बहू को कंट्रोल करूं.
तो वो सभी तरीके के बेसिकली अगर हम रेगुलेशन या कंट्रोल को अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग और एम्पथी से कनेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम का अपने आप ही सोल्यूशन निकल आता है. और समय सबसे बड़ा टीचर है सबका, और समय देना चाहिए हर चीज में, हर प्रॉब्लम में, तो चीजें बहुत सुखद हो सकती हैं.
बिल्कुल मैम. तो मैम अभी एम्पथी की बात हो रही है, सहानुभूति की बात हो रही है, रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो आज के टाइम अगर मैं बच्चों पे आऊँ, बच्चों की जनरेशन पे आऊँ जो 10th 12th कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है आईफोन. और ऐसे कई वीडियोस मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं जिनकी मदर ने बहुत साधारण सी साड़ी पहनी है या जिनके पिता के पैर में बहुत पुराने से चप्पल पहने हुए हैं, लेकिन उनके बेटे या बेटी को आईफोन चाहिए और उनकी इतनी जिद कि उन्हें उनके पेरेंट्स को दिलाना पड़ रहा है और उनके लिए वो अमाउंट शायद बहुत बड़ी रकम है। तो ऐसे मेंटल स्टेटस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इमोशंस होते हैं या इमोशन लेस होते हैं ये बच्चे?
तो आज के यंगस्टर्स को अगर मैं कहूँ, मैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो तो आउटकम है, शुरुआत तो कहीं और से हुई, रिजल्ट उनके थ्रू मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बैकग्राउंड में चेक करेंगे तो जो भी आज वो हैं, कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा रोल हमारा है, पेरेंट्स का है। शायद अगर हमारे संस्कारों में इतना दम हो तो हम अपने बच्चों को इतनी विजडम तो दे सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हमारी पहुंच है और क्या हमारी पहुंच नहीं है। और जब पहली बार बच्चा जिद करता है और हम उसकी जिद को मान लेते हैं, तो शायद अगर उस पहली जिद पे हमने एक बार समय देके रुक कर पॉज लेकर उसकी बात को समझते हुए अपने तरीके से उसको समझाने की कोशिश की होती या सरेंडर नहीं किया होता, तो शायद आज ये सरेंडर नहीं हो रहा होता। बट जब जागो तभी सवेरा, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि इस दुनिया में हर जीव में इमोशन है, सूनर और लेटर अगर अभी भी हमारा बच्चा ये डिमांड कर रहा है तो एक सही तरीका, एक सही प्लेटफॉर्म से अगर हम सक्षम हैं तो हमें लेके देना चाहिए। और बच्चे को नीड बेस्ड अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, उसको उस चीज की जरूरत को जस्टिफाई करना चाहिए कि मुझे ये क्यों चाहिए।
बिल्कुल,
सिर्फ स्टेटस के पर्पस से चाहिए तो उसको हमें ये ज्ञान देना होगा कि बेटा स्टेटस के लिए तुम्हें खुद अपना एक स्टैंड लेना होगा, राइट? हमें उसको समझाना होगा कि आप इतनी मेहनत करो कि ये आईफोन आप खुद खरीद पाओ, और उसके लिए मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को डायरेक्ट करना है, अपनी इंटेलिजेंस को एक सही रास्ता देना है, एक सही करियर का चुनाव करना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल और तुम कर सकते हो। और फिर भी अगर कुछ जिद हो रही है तो थोड़ा सा तो उस जनरेशन को क्वेश्चन, मेरे को बार बार लगता है कि हम उनको ब्लेम कर रहे हैं बच्चों को, पर क्या ये ब्लेम करना सही है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो मैं सबको एक बार सोचने के लिए मजबूर करना चाहती हूँ कि आप सोचिए कि अगर बच्चा ऐसा कर रहा है क्या ये उसकी गलती है या कहीं ना कहीं हम लोगों की जिम्मेवारी है। क्योंकि मुझे लगता है उस बच्चे को ये समझ, जब वो आया इस दुनिया में ऐसी समझ लेकर नहीं आया था, तो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट की, इकोसिस्टम की, स्कूल की, पेरेंटिंग की, घर की, फ्रेंड्स की, सोसाइटी की, सबकी जिम्मेवारी है ये क्रिएट करने में। और अगर आज ये मोबाइल फोन इतना एप्ट हुआ है तो हम बच्चों को उनकी सक्सेस की जर्नी नहीं दिखा पा रहे हैं, हम उनको इस डिस्ट्रैक्शन में फंसने के नुकसान नहीं बता पा रहे हैं।
Exactly.
नहीं तो देखिए कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको पता हो कि मैं दलदल में जा रहा हूँ और फिर भी वो जाएगा। तो एक एक हर चीज की एक लिमिटिंग पॉइंट होता है, राइट? हम लोग तो पढ़ाते हैं स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें एक पॉइंट होता है जिसके बाद, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसको हम कहते हैं, उसके बाद हमें पता है कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा है। तो अगर हम बच्चे को अपब्रिंगिंग से ही उसको उसके संस्कारों को स्ट्रांग करें, उसको उसकी नीड और उसकी जरूरत के बारे में बताएं, उसको हम बताएं कि क्या रेलेवेंट और क्या नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये सारे सवाल अपने आप में जवाब लेके सामने खड़े होंगे। पर अगर आज भी आपके बच्चे कुछ ऐसा डिमांड कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो रेलेवेंट नहीं है, तो मुझे लगता है आपके बच्चे आप ही की एक्सटेंशन है, इमोशन उनमें भी है। एक सही समय पे उनको तरीके से आप समझाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात नहीं समझेंगे, क्योंकि हर बच्चे के अंदर इमोशन है। ऐसा नहीं है कि वो इमोशनलेस हो गया, ऐसा नहीं है कि वो रॉबर्ट बन चुका है, ऐसा नहीं है जो हम मूवीज में देख रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो मशीन्स हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी वो आप ही के बच्चे हैं, आप ही की एक्सटेंशन है, आप ही के अंदर से आए हुए, वो आप को जीवित रखने वाली आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, तो आपकी बात जरूर समझेगी। आपको कहने के तरीके पे काम करना होगा, थोड़ा सा सहज होना होगा। मानती हूँ अग्रेसिव होते होंगे, मानती हूँ वो आपको डराते होंगे, पर आपको अपने मन की बात को रखना आना चाहिए, उनकी इमोशन की रिस्पेक्ट करनी है और अपनी इमोशन को एक्सप्रेस
करना, राइट?
तो ये बैलेंस
करेक्ट वे
हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। बाकी आजकल की जनरेशन को मैं सराहूंगी। आप ये देखिए ना, हम कहते तो हैं कि आजकल की जनरेशन मोबाइल यूज कर रही है, आप ये देखिए कि जब हमने स्कूलिंग की तो उस टाइम पे ना तो फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना इंस्टा था, ना स्नैपचैट था, तो डिस्ट्रैक्शंस तो कहीं थी नहीं.
बिल्कुल.
आज का यूथ सिंगल क्लिक पे उसके पास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है, फिर भी वो कहीं ना कहीं अपना बेस्ट दे पा रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पा रहा है. आप स्पोर्ट्स की बात करें, आप एजुकेशन की बात करें, आप ओलंपियाड्स की बात करें, आप कोई भी रिजल्ट की बात करें, वो बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर रहे हैं, हमसे ज्यादा कर रहे हैं. 13 साल के बच्चे को गूगल ने कई करोड़ का पैकेज ऑफर किया, अगर आपको वो न्यूज पता हो तो. क्यों ऑफर किया? ना तो उसके पास डिग्री थी, स्किल्स थी. तो आज की जनरेशन में स्किल्स को एक्सेप्ट करने का, लर्न करने का जज्बा बहुत है, बस हमें उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन देनी है. सो आज की जनरेशन, आज का यूथ ही हमारी कंट्री की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. Exactly. क्योंकि वी आर द कंट्री वेयर सुपर पावर लाइक USA इज लुकिंग फॉरवर्ड. व्हाई? बिकॉज वो एजिंग इशू को फेस कर रहे हैं और हमारे पास यूथ ही हमारी पावर है.
Right.
तो ये तो हमारी यूथ तो ऐसी सपोर्ट है, अगर हम इसको, इसकी एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करें, इनको गोल ओरिएंटेड बनाएं और इमोशनली स्ट्रांग बनाएं. इमोशनली वीक होता जा रहा है हमारा यूथ.
मैम, आपने बातचीत में संस्कार वर्ड लिया, तो संस्कार जो है ये बहुत ज्यादा चिंता का सब्जेक्ट है कि हमारी जो यूथ है बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव कर रही है. तो इसका क्या रीजन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, अगेन मैं दोबारा से यूथ से अपने ऊपर आती हूँ कि वो वेस्टर्न कल्चर की वो चीजें ले रहा है जो हम उसे दे रहे हैं, जो दिखा रहे हैं. वेस्टर्न कल्चर की बहुत सारी अच्छी चीजें भी होंगी, और मैं मानती हूँ कि कोई भी कल्चर मिक्स है, कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी हैं. कोई भी इंडिविजुअल परफेक्ट नहीं है और कोई भी नेशन परफेक्ट नहीं है. हर कहीं के कुछ अच्छी चीजें हैं, वो चुनाव होते हैं कि हम क्या ले रहे हैं. आप ये देखिए ना, वेस्टर्न कंट्रीज का कितना अच्छा कल्चर, जो मुझे लगता है कि 17-18 साल के बाद माँ बाप अपने बच्चों को फीड करना बंद कर देते हैं. 18 इयर्स 17 इयर्स का होते ही उनको, वहां के यंगस्टर्स को पता है कि नाउ माय पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू फीड मी, अभी मुझे मेरे पढ़ाई भी खुद करनी है. तो वो दिन में पढ़ते हैं, शाम को काम करते हैं, खुद अपने इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई पेरेंटिंग वाला सपोर्ट नहीं है, घर का काम भी खुद करते हैं, टक शॉप पे चीजें बेचते हैं, छोटे छोटे टास्क से पैसा अर्न करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं और अपना जीवन इंडिपेंडेंटली टेक ओवर करते हैं. राइट. वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इतनी विजडम उस एज तक दे दी जाती है, वो कल्चर बन गया. हमने वेस्टर्न कल्चर की बाकी चीजें, हमने ये क्यों नहीं,
तो इतना बच्चों को ओवर पैम्पर्ड कर दिया जाता है.
हमारे यहाँ तो पेरेंट्स ये बोलते हैं, बेटा कोई बात नहीं, इतना है कि 7 पुश्तें भी खा लेंगे.
Exactly,
तो बट सात पुश्तों के बाद क्या? क्योंकि वो संस्कार तो पास ऑन नहीं हो रहे ना, मेहनत करने के,
बिल्कुल,
करेज के, एफर्ट्स के, स्मार्ट वर्क के. अगर पेरेंट्स कब तक सपोर्ट कर सकते हैं? तो आपको अगर देना ही है तो अपने बच्चों को जज्बा देना चाहिए, आपको देना ही है तो बच्चों को सपना देना चाहिए, आपको देना ही है तो बच्चों को पॉजिटिव माइंडसेट देना चाहिए, ताकि वो हर कल्चर की अच्छी चीजें ले पाए. और वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, सब कल्चर्स मुझे लगता है बहुत अच्छे हैं. हमारे पे है कि हम कौन से कल्चर की कौन सी बात को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं. तो वेस्टर्न कल्चर के ड्रेसिंग अटायर तो पेरेंट्स ने भी ले लिए, मदर्स भी आजकल ड्रेसअप होती हैं तो वेस्टर्न अटायर के अकॉर्डिंगली होती है. बट क्या वो वेस्टर्न कल्चर की अच्छी चीजें भी हम ड्रेस के साथ साथ या उनके ओपननेस के अकॉर्डिंगली हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे? ओपननेस क्यों नहीं हमारे विचारों में आ रही है? सिर्फ कपड़ों में क्यों आ रही है? राइट. तो इन सब चीजों, ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, मुझे लगता है हम सबको सोचने की जरूरत है.
और एक चीज ये भी है, मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स अपने बच्चों को आज के टाइम में क्वालिटी टाइम भी दे रहे हैं.
ये एक ऐसा पॉइंट है जो मेरे भी दिल के करीब है, क्योंकि मैं वर्किंग मदर रही हूँ. तो कहीं ना कहीं बहुत सपोर्टिव मेरी फैमिली रही, मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, शायद इसीलिए मैं अपने वर्क प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाई अपने अकॉर्डिंगली. अगर मेरे फैमिली का वो सपोर्ट, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया मेरे बच्चे को बड़ा करने में, अगर वो जिस समय मैं अपने कॉलेज में काम करती थी उस समय उसको कोई टेक केयर ना करता सही से, तो शायद मैं अपना बेस्ट कभी नहीं कर पाती. तो मैं दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ अपने हस्बैंड का, अपने फादर इन लॉ का, जो मेरे लिए हमेशा एक सपोर्ट बन के रहे और अभी भी हैं. हर चीज में, तो समय देना जरूरी है कि उस समय से आपका बच्चा आपसे कनेक्ट कर पाता है, उसको लगता है कि कोई है जो मेरी बात सुन सकता है। और सबसे बड़ा चैलेंज आजकल के यूथ को यही आ रहा है कि हमारे यहाँ की जनरेशन की मदर्स के पास किटी पार्टी पे जाने के लिए 2 घंटे हैं, पर क्या वो 2 घंटे वो केयर टेकर बच्चे के लिए एसोसिएट कर सकते हैं, होम ट्यूटर कर सकते हैं, वो पैसा बहुत लगा सकते हैं, बट पैसे की सिर्फ जरूर, इसीलिए वो बच्चा आईफोन मांगता है क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस ही पैसे की दिखाई गई है,
फैमिली की इम्पोर्टेंस,
इमोशनल कनेक्ट की, इमोशनल एक माँ की उस हग की जो एक बच्चे को तब चाहिए जब वो कलैप्स कर रहा है, जब वो फील कर रहा है कि मैं हार रहा हूँ, माँ की, पिता की वो पीठ पे थपथपाहट की नहीं बेटा यू आर द बेस्ट, तू कर लेगा। और बेस्ट और वर्स्ट तो कुछ होता ही नहीं, मैं मानती हूँ कोई कंपटीशन ही नहीं है, हर इंडिविजुअल एक यूनिक क्वालिटी के साथ परमात्मा की तरफ से इस दुनिया में आया है, तो हमें अपने बच्चे को कंपटीशन करना सिखाना तो अपने आप से, तो कल क्या था तो आज क्या और कल क्या होगा, जबकि हम कॉम्पीट करते हैं अक्सर अक्सर उस प्लेटफॉर्म पे मैं भी आती हूँ, हम मतलब हम सब कॉम्पीट करवाते या करते हैं कि तेरे दोस्त का क्या रहा, बाकी जो बैचमेट है उनका क्या रहा, देखो बच्चे के ऊपर
के स्किल्स नहीं पहचानने की कोशिश करते हैं।
हाँ राइट, तो आजकल की जनरेशन के ऊपर एक तो सोसाइटी का प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, कंपटीशन का प्रेशर तो ऑटोमेटिकली है, और सबसे बड़ा सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन का प्रेशर, इतने सारे प्रेशर्स को वो अकेला हैंडल कर रहा है, तो परिवार की सपोर्ट और अटेंशन के बिना तो बहुत मुश्किल है। और अक्सर आज के समय में हम सब लोग रिसोर्सेज को गैदर करने की दौड़ में वो भूलते जा रहे हैं कि आपस में बैठना, बात करना, एक दूसरे के लिए इमोशनल सपोर्ट बनना
होते जा रहा है।
हाँ जी, वो बहुत जरूरी है कि हम इमोशनली एक दूसरे को, इमोशनल बच्चे हमारे बहुत वीक होते जा रहे हैं।
इसका एक रीजन मैं ये भी मानती हूँ मैम कि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, बच्चा किसी न किसी से कनेक्टेड होता था बहुत ज्यादा, आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चे अपनी बातें नहीं शेयर कर पा रहे, अलोन रहते हैं, कई बार वो गलत संगत में भी पड़ जाते हैं जो उन्हें गलत तरीके से सजेशंस देते हैं। और कहीं ना कहीं मतलब दो सिचुएशन मैं आपके सामने रखती हूँ, एक सिचुएशन ये है कि बच्चे अगर फेल कर गए 10th 12th या स्कूलिंग में फेल कर गए, और दूसरा सिचुएशन ये है कि आजकल जो ब्रेकअप्स होते हैं, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स होते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के, ये दोनों सिचुएशंस में बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ ओवरकम कर जाते हैं, कुछ ओवरकम नहीं कर पाते, तो इसके बारे में आप क्या सजेशन देगी?
ये बहुत रेलिवेंट पॉइंट है, तो मैं पहले पार्ट, पहली सिचुएशन से शुरू करती हूँ। सही समय पे सही सवाल आपने पूछा है, बोर्ड एग्जाम कुछ दिन में आने वाले हैं, 10th और 12th के बच्चों की अभी थोड़ी सी स्टेट ऑफ माइंड स्ट्रेस वाली चल रही है, तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि बेटा एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हम हर जीवन भर ये सिर्फ पेपर वाला एग्जाम नहीं देने वाले, जीवन अपने आप में एक एग्जाम है और आपको उसको हर मोमेंट पे हर दिन पास करना है, तो एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, उससे डरना नहीं है, तो एग्जाम को आपको करेज के साथ लेना है, और माँ बाप की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉरल सपोर्ट बन के रहना, ना कि प्रेशर कि तुझे इतने लेने हैं मार्क्स, उतने लेने हैं। देखो हर बच्चा कोई अपना नुकसान नहीं चाहेगा, आप उसको सपोर्ट दो कि बेटा आपको, आपके साथ हम खड़े हैं, आप अपना कर्म में एफर्ट डालो, बेस्ट एफर्ट डालो, तो 10th 12th एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बाकी क्लासेस से बहुत ईजी है, पहले तो मैं ये बताऊंगी। बोर्ड का डर है, जबकि बोर्ड्स अपने आप में बहुत ही एक सहज प्रोसेस का पार्ट है, तो ऑल माई डियर स्टूडेंट्स जो भी मेरी बात को अभी सुन पा रहे हैं, पहले तो मैम के जवाब से पहले मैं आप लोगों को एड्रेस करना चाहूंगी कि आप लोग ये मान के चलें कि ये एग्जाम इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ योर करियर जर्नी, और ये एग्जाम्स में जो भी आप को प्रश्न आ रहे हैं, आप अपनी विजडम से, सहज भाव से, इमोशनली स्ट्रांग होते हुए अपने एग्जाम्स को फेस करो, और जरूरी मैं एक कॉन्फिडेंट हूँ कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। राइट, अब आते हैं मैम के सवाल पे कि जो नहीं कर पाते, तो एग्जाम्स आप ये समझिए कि ऐसा, देखिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक बार नहीं हुई तो आप कोलैप्स कर गए. आज आपने 80% लिए, आपकी एक्सपेक्टेशन 90 की थी, तो नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट आप कोर्स करेंगे आप उसमें ओवरकम कर लो.
बिल्कुल,
कोई बुराई नहीं है. और मैं सच बताऊं तो मार्क्स इज जस्ट अ नंबर. आज का समय स्किल्स का है, ना कि नंबर्स का है. तो आप अपनी स्किल बिल्डिंग पे एफर्ट डालो बेटा. तो ये भी समझना जरूरी है, और ये समझ तभी आएगी जब बच्चे इमोशनली अपने आप को समझेंगे, सेल्फ अवेयरनेस होगी. तो आजकल की जनरेशन को अपनी इंट्रोस्पेक्शन पे, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने में, अपने आप को जानने में एनर्जी लगानी पड़ेगी. और माँ बाप, पेरेंट्स का और स्कूल सिस्टम का और सोसाइटी का यही रोल होना चाहिए कि बच्चों को और अवेयर करें, मॉरली स्ट्रॉन्ग करें, वैल्यू बेस्ड उनको इतना एम्पावर करें कि डर उनको डरा ना पाए, डर उनकी लाइफ की जर्नी का पार्ट बन जाए. अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाए, राइट? तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे वो इमोशनली
बेसिकली बोर्ड एग्जाम्स जब आते हैं. मैम, हम भी स्कूल में थे, हमने भी बोर्ड एग्जाम फेस किया. बाकी एग्जाम्स की तरह ही ये भी एग्जाम होते हैं, लेकिन एक होता है कि भाई बोर्ड एग्जाम है, एक अलग सा डर बैठा दिया जाता है.
तो वो डर बनाया हुआ है, रियलिटी में कोई डर सच में नहीं है. मैंने भी अपने समय में बोर्ड एग्जाम दिया, और अभी मैं बहुत सारी वर्कशॉप में बच्चों को एग्जाम स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए सेशंस लेती हूँ. तो मैं उनमें यही बताती हूँ कि एग्जाम इज जस्ट अ पार्ट. इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम आर मोर कंफर्टेबल फॉर अ स्टूडेंट बिकॉज प्री बोर्ड वो दे देता है. अदर क्लासेस में प्री बोर्ड 1 हो रहा है, प्री बोर्ड 2 हो रहा है, मिड टर्म एग्जाम हो रहे हैं, इतने सारे प्रिपरेटरी टेस्ट हो रहे हैं. तो आप इतने ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी कर चुके होते हो कि आपके लिए मुश्किल नहीं है. और दूसरा केस आपने जो बोला,
स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगी कि आप रिलैक्स रहो, कुछ भी ऐसा नहीं होता, एंड जो भी चीजें है आप उसको एक्सेप्ट करो.
हाँ, एक्सेप्ट. अब यार तीन चीजें हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ है, चाहे वो रिलेशनशिप है. पहला अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, जो इंसान को करनी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है. आपको अपनी स्ट्रेंथ और आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए. दूसरा है एम्पथी. आप किसी को भी, अक्सर हम अपना बेस्ट तब नहीं दे पाते जब हम किसी ना किसी इमोशन में ट्रैप हो जाते हैं कि वो ऐसा कैसे, मैं ऐसा क्यों नहीं. तो वो आपको एम्पथी से, वो ऐसा कैसे, आपको उसकी सिचुएशन में आके अगर आप सोचोगे, उसके पर्सपेक्टिव को समझोगे, तो बहुत सारा द्वंद वहीं खत्म हो जाएगा. और तीसरा है सेल्फ रेगुलेशन. देखिए बेटा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं लाइफ में, तो आपको अपना सेल्फ कंट्रोल तो बनाना पड़ेगा. एक गोल बनाओ, और गोल तक पहुंचने के रास्ते में कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, सेल्फ रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करते हुए रेजिलेंस के साथ. मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी मुश्किल है.
बिल्कुल मैम. एंड मैम रिलेशनशिप पे आते हैं.
हाँ, आपका सेकंड सिचुएशन थी कि ब्रेकअप होने के बाद अक्सर लोग काफी समय ले लेते हैं और उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाते. और कई लोग तो ऐसे हैं जो पूरा पूरा जीवन वहीं अटके रह जाते हैं. तो मैं इतना ही कहूंगी कि जीवन एक यात्रा है, राइट? कुछ सुखद अनुभव होते हैं और कुछ दुखद होते हैं. अगर आपकी किस्मत में कोई चीज है तो वो आपसे दूर नहीं रह सकती, और अगर नहीं है तो आपके पास भी नहीं रह सकती. जितना अच्छा समय आपने किसी के साथ बिताया उसको चेरिश कीजिए, उसके लिए उसका शुक्राना कीजिए. किसी के साथ कर्स मत कीजिए, और किसी के लिए कोई बुरा भाव मत रखिए. जो आपके किस्मत का, आपके हिस्से का समय था वो आपको मिला, शायद अब कुछ और अच्छा आपके इंतजार में है. और ये सब समझ तभी आएगी जब आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे, आप सेल्फ अवेयर होंगे, आप एम्पैथेटिक होंगे, आप सिचुएशन में जाके डिसीजन ले पाएंगे. तो आपको अपनी इमोशनल ट्रैप का हिस्सा नहीं बनना. एक ट्रैप है जहां आप एक ही इंसान की एक ही बात पे अटक गए हैं. अगर आप उसके लिए इतने इम्पोर्टेंट होते तो शायद वो जाता ही नहीं.
बिल्कुल.
और जब आप उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो तो आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो,
क्यों रहना है इंसान के साथ?
ये समझने की, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन एक प्रेशियस गिफ्ट है उस परमात्मा का. और जब आप इस दुनिया में आए हैं तो उसने एक टाइम फिक्स कर दिया आपके लिए, और हर दिन वो टाइम कम होता जा रहा है. तो क्या इतना प्रेशियस टाइम जो इनवैल्यूएबल है, उस टाइम को आपको लगता है कि आपको दुखी रह के, सैड रह के, देवदास बन के अपने इस समय को व्यर्थ जाने देना है जो अमूल्य है?
बिल्कुल.
तो लाइफ इतना प्लेजेंट प्लेटफॉर्म है, और ये यात्रा एक इतनी सुखद यात्रा है कि अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया में आपसे बहुत ज्यादा अच्छे और लोग हैं. और आपकी किस्मत में जो अच्छा इंसान है, आपका लाइफ पार्टनर जो बनेगा, वो ऑलरेडी डेस्टाइंड है, अब तक पहुंच जाएगा.
मैम ने दो बहुत अच्छी बात कही, एक तो कि आप अपने इमोशनल ट्रैप में खुद फंस रहे हो, राइट, कोई आपको फंसा नहीं रहा, आपकी जो लाइफ है सिर्फ आपके हाथ में है, तो अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल करके ओवरकम कीजिए। एंड सेकेंड चीज़ मैम ने कही कि लाइफ में हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो ये चीज़ मैम मैं भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करती हूँ। लाइक मैं अगर एक छोटा सा फनी सा एग्जाम्पल दूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ अगर मेरी छोटी सी आर्गुमेंट हो गई, हो जाते हस्बैंड वाइफ में, तो मुझे लगता है 2-3 दिन क्यों नाराज रहना, हम अपनी लाइफ में से 2-3 दिन तो खराब कर देंगे,
खराब कर
वेस्ट कर
देंगे।
देंगे,
यस
चलो बातें बोल के लड़ झगड़ के बात को खत्म करो,
खत्म करो।
एंजॉय करो लाइफ को।
यस
तो अपने लाइफ के जो प्रीशियस टाइम है उसको आप खराब मत करो किसी भी रीजन से, जो भी चीजें शॉर्ट आउट करो, काम
हाँ,
खत्म
काम
करो।
खत्म करो। ये बहुत अच्छी अप्रोच है और मुझे लगता है यही लाइफ का मंत्रा है।
बिल्कुल मैम।
जिसको ये मंत्रा समझ आ गया उसका हर प्लेटफॉर्म सुखद है, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे वो फैमिली फ्रेंड है, चाहे वो फ्रेंडशिप है। क्योंकि यार होने को तो कुछ है ही नहीं ना आपके पास, क्योंकि
अरे
आप खाली हाथ आए थे जब आए थे
बिल्कुल,
इस दुनिया में, राइट? जाना भी खाली हाथ है, तो
बिल्कुल
फिर द्वंद किस चीज का? कमाना
मैम,
थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो जाएगा, बट वो ज्यादा कम आपकी खुशियों को लेके जा सकता है आपसे। खुशी तो आपकी है, दैट्स योर
बिल्कुल।
डिसीजन टू स्टे हैप्पी और नॉट, राइट?
लाइफ में कभी भी मैम मुझे लगता है किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये जो ईर्ष्या है, जेलसी है, ये लोगों को लाइफ में हैप्पीनेस को कम करता है। और ये चीज बहुत कॉमन मुझे देखने को मिलता है कि मतलब लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा जेलिस हो रहे हैं।
तो ईर्ष्या जेलसी वाली देखो वो कंपटीशन का आउटकम है, पर
जी जी
वो अगर सेल्फ अवेयरनेस होगी, इमोशनली एम्पथेटिक बनेंगे हम,
कॉम्पिटिशन मैम करना अच्छी बात है, नहीं ईर्ष्या
ईर्ष्या
करना
करना
ये
गलत
खुद
है।
को पेन में डालना है।
यस यस उसमें देखे ना, ये साइंस ने प्रूव किया है कि हर इमोशन का एक रिएक्शन है
बिल्कुल
और उस रिएक्शन से हमारी बॉडी में कुछ सिक्रीशन होता है।
बिल्कुल
हम मेडिकल ग्राउंड पे आए तो जब आप ईर्ष्या कर रहे हैं, सामने वाला इंसान उससे दुखी हो रहा है नहीं हो रहा वो नहीं पता, बट आपकी बॉडी में जो रिएक्शन होके जो जूसेस रिलीज हो रहे हैं और
बिल्कुल
उसका क्या आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है, उसको ध्यान से सोचिए, आप ईर्ष्या करनी
बेसिकली
बंद कर
लोग
देंगे।
ना इन चीजों से भी नहीं निकल पाते कि उसने मेरे साथ गलत किया तो वो हैप्पी कैसे है। आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहो, आप दूसरों को हैप्पी देके क्यों अपनी लाइफ अपना टाइम खराब कर रहे हो।
राइट तो मुझे लगता है कि इतना समय है नहीं हमारे सबके पास कि हम किसी
बिल्कुल
और को अपना समय दें। तो जब
बिल्कुल
आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, मतलब आप अपना प्रेशियस टाइम
किसी और
किसी
को दे
और को
रहे
दे
हैं।
रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप अफोर्ड करते हैं। और कोई और इतना इम्पोर्टेंट है जिसके लिए आप अपना समय बिताएं। आप वही समय को अपने लव्ड वन, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के साथ जिए, क्योंकि बहुत सारी सेलिब्रेशन है जो आपको हर दिन करनी है।
बिल्कुल मैम। एंड मैम अभी इमोशंस की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि हर किसी में इमोशंस होते हैं, कोई भी इमोशन लेस नहीं होता है। हमारी सोसाइटी में जनरली मैन को कहा जाता है अगर वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस भी करते, लड़की हो क्या, बी अ मैन, उन्हें रोना अलाउ नहीं है क्योंकि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशंस जो हैं वो इंसान का निकलता है। इमोशंस जहाँ तक अगर मैं आपसे कहूँ कि 2-3 तरीके से निकलता है, या तो इंसान रोकर निकालेगा अपने इमोशंस को, या तो अंदर वो दबाता जाएगा इमोशंस को, और वो कहीं ना कहीं एग्रेशन में भी कई बार बाहर आता है इमोशंस। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
ट्रेनिंग करती हूँ पेरेंटिंग पे भी और अदरवाइज भी, तो मैं ये बात एक वीडियो भी शो करती हूँ जिसमें बोला गया कि लड़के रोते नहीं हैं।
जी
रोते नहीं हैं तो वो रुलाते हैं, क्योंकि बचपन से उनको हम संस्कार यही दे रहे हैं कि लड़के
बिल्कुल
रोते नहीं हैं, रोते नहीं हैं। अरे भैया, जैसे हंसी है वैसे रोना भी एक इमोशन है, जैसे
बुरा उसे
दिन
भी लग
है
सकता है।
वैसे रात है, जैसे
बिल्कुल
हंसी है वैसे रोना है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके लिए एक ही इमोशन काम करे। एक इंसान कैसे हमेशा हर समय हंस सकता है?
बिल्कुल मैम।
तो जब उसको खुशी मिल रही है तो हंसना चाहिए, जब दुख मिल रहा है तो रोना भी चाहिए। और मुझे लगता है इसी वजह से बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हार्ट अटैक की अगर हम बात करें तो आप परसेंटेज देखिए, मेल डोमेन ऑफ आर सोसाइटी इज मोर प्रोन टू हार्ट अटैक बिकॉज दे डोंट एक्सप्रेस
देयर फीलिंग्स
देयर इमोशंस टू क्राई। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव, मुझे लगता है कि रोना बुरा नहीं है, बट हाँ रुलाना बहुत बुरा है। तो अगर आप अपने इमोशन को वैसे नहीं निकालेंगे तो कहीं ना कहीं रुलाने में, अग्रेशन में, एंग्जाइटी में वो एनर्जी निकलेगी। तो एक संस्कार, ये लड़के रोते नहीं हैं वाला चेंज होना चाहिए, कोई कोई भी रो सकता है और कोई भी हंस सकता है, बट हाँ कोई भी रुलाए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन और इतनी सारी प्रॉब्लम की वजह से इंसान की लाइफ में दुख आते हैं. तो आप प्लीज़ दुख मत क्रिएट कीजिए और रिस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे की और एक दूसरे की इमोशंस की. अगर लड़का रो रहा है तो वो वीक नहीं हो रहा, और लड़की नहीं रो रही है. बहुत बार कहा जाता है कि डोली विदा होती थी पहले लोग बहुत रोते थे, पर अब थोड़ा सा चेंज आ गया है, वो कल्चर खत्म होता जा रहा है. तो बुरा ही नहीं है, बदलाव इनएविटेबल है, तो चेंज आएगा. नेक्स्ट जनरेशन आ रही है तो वो खुश होकर जा रहे हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है. कोई जरूरी नहीं है ना कि वो लड़की को रोना ही चाहिए.
बिल्कुल,
हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हमें इवन मैंने ऐसे कई प्लेटफॉर्म देखे हैं जहाँ डेथ को सेलिब्रेट किया जाता है.
मैम अगर सेलिब्रिटीज़ की बात करूँ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाने के बाद में लोगों के पैर ज़मीन पर नहीं रहते हैं और वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनकी नेम एंड फेम जो है वो उनके गलत कामों की वजह से ख़त्म भी हो गई है, उनका ग्राफ काफ़ी डाउन आ गया है. तो ऐसे में आप कोई एग्जाम्पल सेट कर सकती हैं?
हाँ, दो नाम मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं जो जिन लोगों ने दोनों ने इकट्ठे काम शुरू किया. पहला नाम है हनी सिंह, और हनी सिंह के पास दिलजीत दोसांझ ने अपनी शुरुआत की थी एक सॉन्ग के साथ, इकट्ठे दोनों ने सॉन्ग किया था. तो वहाँ से जर्नी एक 2016 में एक ऐसी सिचुएशन हुई थी कि दिलजीत के घर के बाहर बहुत सारी पब्लिक प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गई थी. उनकी मदर अंदर थी घर में और उनके किसी सॉन्ग को लेके प्रोटेस्ट हुआ था, और उस सिचुएशन को उन्होंने अपनी मम्मा को प्रॉमिस किया था कि माँ आप आज ऐसा फेस कर रहे हो कि लोग परेशान होके हमारे पास आए, मैं ऐसी सिचुएशन बनाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि पूरी दुनिया ऐसे ही तो आपके पास आएगी प्राइड के साथ. और उस दिन जब ये सिचुएशन हुई तो वो बाहर आके अपनी गलती को बहुत सहज तरीके से एक्सेप्ट करते हुए लोगों को ये रियलाइज कराया कि हाँ मेरी गलती है और मैं आगे कोशिश करूँगा कि मैं इसको ओवरकम करूँ और अपने समाज और अपने कल्चर को पॉजिटिवली प्रोमिनेट करते हुए. तो ये अवेयरनेस थी, सेल्फ अवेयरनेस, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे पहला
गलती को एक्सेप्ट करना
कॉम्पोनेंट है. पैरेलली अगर हम बात करें हनी सिंह की, तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बट उनको खुद को ही नहीं उस समय पता था कि उनको कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज, बाइपोलर डिसऑर्डर उनका एक डायग्नोस हुआ था, उससे वो जूझ रहे थे. तो उनको लगता था वो भगवान है और उनके जैसा कोई नहीं है.
तो ये भी एक तरह का डिसऑर्डर होता
है. ये डिसऑर्डर होता है, ये इमोशनल माइंडसेट इशू ही है, मेंटल हेल्थ इशू है. और जब उनको ये अच्छी चीज ये है हनी सिंह की भी, कि जब उनको पता लगा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने में शर्माए नहीं. उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आके अपने उस प्रॉब्लम को बताया, ताकि जो और लोग उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनके लिए भी एक प्रॉब्लम ना रह जाए और वो भी एक्सेप्ट करें. और जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो चैलेंज कम हो जाते हैं, और शर्माना नहीं चाहिए किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने में. तो हनी सिंह कुछ टाइम के लिए बहुत प्रॉब्लम में रहे इन सब इश्यूज, मेंटल इश्यूज की वजह से, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को उस ईगो स्टेट में फील करते थे कि मैं राजा हूँ, मतलब आई एम द किंग ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, मेरे जैसा तो कोई है नहीं. पर जब उनको रियलाइज हुई ये प्रॉब्लम अपनी, और उन्होंने उसके ऊपर काम किया, और जब वो कम बैक किया उन्होंने, तो दोबारा से उसी एनर्जी और सहज भाव के साथ ही केम बैक टू द इंडस्ट्री. और मुझे लगता है बड़प्पन यही है, गलतियां सबसे होती हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. आगे बढ़ते हुए जो आज की फेम है, दैट इज दलजीत से दिलजीत की जर्नी, जो कि आप लोग भी देख रहे होंगे आजकल. बहुत अभी रिसेंटली हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिलके आए हैं दिलजीत जी. तो कैसे वो दलजीत से दिलजीत बने, कैसे उन्होंने इमोशनल अवेयरनेस के साथ अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने फील्ड में, अपनी कला में, आप देखिए उनकी पर्सनालिटी से कुछ चीजें हैं जो हम सब सीख सकते हैं. दिलजीत की सबसे पहली चीज तो गलती को एक्सेप्ट करना. उन्होंने 2016 में जब ये सब हुआ तो उसको अपनी गलती को एक्सेप्ट किया पब्लिकली, और हाथ जोड़ते हुए उनको प्रॉमिस और अश्योरेंस दिया कि अब आगे जो भी होगा वो मैं रिस्पेक्टफुली करूंगा. फिर वो आश्वासन में उन्होंने बोला कि मैं अपनी पगड़ी की रिस्पेक्ट करूंगा। तो आप देखते होंगे हर जगह वो पगड़ी पहन के ही जाते हैं और अपने उस धर्म की पॉजिटिविटी को एक आगे लेके जा रहे हैं।
बिल्कुल।
एक मूवी आई थी चमकीला, जिसमें उन्होंने पगड़ी के बिना
जी
एक्ट किया था, तो दोबारा से सारा उनका वो जो पब्लिक उनके अगेंस्ट हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा वाइजली उस सिचुएशन को फेस किया और पब्लिक को बताया कि मैंने ये विग पहना हुआ है, मैंने अपने उस कल्ट ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट की है और कहीं मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं की, और वो उन्होंने विग पहन के वो एनेक्ट किया। तो पहली चीज तो यह गलती को एक्सेप्ट किया और अश्योरेंस दी, और उस अश्योरेंस को आज तक पूरा कर रहे हैं। दूसरा उनसे सीखने वाला है उनका हम्बल नेचर। कितने भी सक्सेसफुल हो गए हैं, वो उनके दिमाग पे चढ़ के नहीं बोल रही उनकी सक्सेस। आप देखिए ना, अभी इंटरनेशनली भी वो इतने बड़े बड़े शोज करके आ रहे हैं, हमारी कंट्री में उनका इतना ज्यादा रेवेन्यू ही इज ब्रिंगिंग बैक इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, और जितने सक्सेसफुल शोज उनके हैं, मतलब दुनिया उनको उनकी कला और उनकी हम्बलनेस की वजह से सराह रही है। तो आप देखते होंगे अभी रिसेंटली मैनचेस्टर में भी उनका एक शो हुआ था, जिसमें ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां तक आज तक कोई इंडियन जाके नहीं परफॉर्म कर पाया, बट ही हैज परफॉर्म्ड रिसेंटली, और अभी इतना वो अपनी कंट्री में अर्न करके बाकी कंट्री से आ रहे हैं और इस कंट्री को नेम और फेम दे रहे हैं। कैसे इतने बड़े प्रोटेस्ट, इतने बड़े डिसरिस्पेक्ट रिसीव करने के बाद, इतने बड़े लोगों की डिसअग्री करने के बाद 2016 से आज की जर्नी अगर उनकी देखें, तो मुझे लगता है कि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, उनकी इमोशनल अवेयरनेस, हम्बल नेचर, एम्पथी, हमेशा हर सिचुएशन में दूसरों को पहले रखना। फॉर एग्जांपल अभी उनका एक शो था, उस शो में रतन टाटा जी की डेथ हुई थी, तो उन्होंने टाटा जी को कंडोलेंस देते हुए स्टेज पे ट्रिब्यूट दिया। तो कोई भी कलाकार अपने शो के बीच में ऐसा नहीं करता, बट टू हिम, और जिन्होंने उनकी जर्नी शुरू कराई वो उनको कभी नहीं भूलते हैं, हमेशा अपने प्लेटफॉर्म को, अपने प्रोग्राम्स में उनको, जिन्होंने उनको फर्स्ट ओपनिंग दी थी उनको सराहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक इमोशनली स्ट्रांग इंसान के हैं, गलती एक्सेप्ट करना, अपनी गलती को समझते हुए आगे बढ़ना, उसके बाद हम्बल और काम रहना कितने भी सक्सेसफुल होने के बाद। और मुझे लगता है ये सब चीज़ें एक इंसान की स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाती हैं। और दिलजीत जी आज की डेट में अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट अवेयरनेस और अपने आर्टिस्टिक, उनकी कला में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए। मैम आपको बताना चाहूँगी, उन्होंने बचपन में, उनके मामा उनको ले गए थे 12 साल की उम्र में, जब वो अपनी माँ और बाप दोनों को ही, पेरेंट्स को छोड़ के म्यूजिक सीखने के लिए चले गए थे बाहर अपने घर से, अपने गांव से, और वहाँ वो बहुत सारे साल अपने अकेले एक रूम में रहे, फैमिली की उस अपब्रिंगिंग को, सपोर्ट को मिस किया, बट स्ट्रगल से ही सक्सेस स्टोरी निकलती है, तो वो लाइव एग्जांपल है।
बेसिकली आपने जो क्वालिटीज बताई, मुझे लगता है हर पर्सन में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, हर रिलेशनशिप्स में ये होना चाहिए, ताकि सारी चीजें बहुत स्मूथ चले।
बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और सिर्फ पैसे को वैल्यू नहीं करना चाहिए, इमोशंस और रिलेशंस को वैल्यू करना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि जो इंसान इनकी कदर करता है वो आगे बढ़ता ही बढ़ता
बिल्कुल,
है।
बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैम मैं ऑफिस की बात करूँ, वर्क प्लेस की बात करूँ, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस हो या कोई भी वर्क प्लेस हो, तो वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है ना कि कई बार जो मैनेजर्स होते हैं, बॉस होते हैं, या कई बार जो टीम मेंबर्स होते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे में कई बार स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी हो जाती है, कई बार एम्प्लॉयज को PIP भी दे दिया जाता है, तो कभी मैनेजर्स की गलती होती है, कभी टीम मेंबर्स की गलती होती है, तो ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में EI कैसे काम करता है?
मेरे को लगता है ये इमोशनल इंटेलिजेंस तो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड है। एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगी, मान लीजिए कि कोई दो एम्प्लॉयज के बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उस समय अगर उनका लीडर इमोशनली स्ट्रांग है, तो वो दोनों के पर्सपेक्टिव को समझते हुए, उनको काउंसल करते हुए एक सुखद स्टेट में लेके आ सकता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक छोटा सा और एग्जाम्पल है, अगर हम ये सत्य नंडेला का एग्जाम्पल लें, तो अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इमोशनली अपने पूरे कल्चर को बड़ा स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनके एम्प्लॉयज़ भी सिस्टम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दैट्स द रीज़न कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेस स्टोरी है, राइट? ऐसे ही अगर हम बात करें किसी भी संस्था की, तो अगर लीडर एम्पैथेटिक है, इमोशनली अवेयर है और जानता है कि कहाँ स्टॉप करना है और कहाँ चलना है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी उसी स्टेट से देख सकता है, और अगर एम्प्लॉयज़ भी उसी स्टेट में हैं तो वो अपने सीनियर्स की कोई भी रूल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. और अगर ये पूरा प्रोसेस ऐसा है तो आप खुद सोचिए ना कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट अपने आप ही रिजॉल्व हो जाते हैं, ग्रेवेंसेज अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं. तो जो एनर्जी लॉ सूट्स में कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स में जाती है, आप उस एनर्जी को सेव कर रहे हैं, और उस एनर्जी को अगर आप अपने काम में सहज एज अ टीम टीम स्पिरिट में टीम बिल्डिंग में लगाते हैं तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस आउटकम है, पर उसका इनपुट इमोशनल अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन और उसकी अंडरस्टैंडिंग है. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इमोशनल एस्पेक्ट पे एम्पावर्ड है, एम्पावर्ड का मतलब ईगो स्टेट हाई नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट का कल्चर.
तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके ट्रेनिंग भी वर्क प्लेसेस पे होनी चाहिए?
होनी चाहिए, और बिहेवियरल ट्रेनिंग जिसमें एम्प्लॉय एम्पावरमेंट या टीम बिल्डिंग वर्कशॉप्स या फिर सीनियर्स अगर लीडर्स लेवल की बात की जाए तो उनके कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, ये सब उसका पार्ट है. और मुझे लगता है जहां जहां ऐसी एक्सरसाइज होती हैं वहां वहां पर सक्सेस ऑटोमेटिकली इनएविटेबल है, आती आती है. क्योंकि सक्सेस कब आएगी? जब सबका एक गोल होगा, कॉमन गोल होगा. कॉमन गोल कब बनेगा? जब ईगो क्लैशेस नहीं होंगे. ईगो क्लैशेस कब नहीं होंगे? जब इमोशनली हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एम्पैथेटिक होके फीलिंग्स को और उनकी सिचुएशंस को समझेंगे वर्कप्लेस पे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, क्रिटिसिज्म ना करके उसको हैंड होल्ड करेंगे, सपोर्ट देंगे,
या कई बार खुद को उनके प्लेस में रखकर देखेंगे सिचुएशन को.
एम्पैथी इज ऑल अबाउट पुटिंग योरसेल्फ इनटू समबडी एल्स शूज, मतलब किसी और की सिचुएशन में आके. तो जब एक लीडर अपने एम्प्लॉय की स्टेट में जाके डिसीजन लेगा और एक एम्प्लॉय अपने लीडर की स्टेट में आके उनके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करेगा या उनकी नॉर्म्स को सिस्टम को समझेगा, तो कहीं भी ईगो क्लैश नहीं आ सकते. और ईगो क्लैश नहीं होंगी तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तो सोल्यूशंस ही सक्सेस.
बिल्कुल मैम. एंड लीडर्स की हम लोग बात कर रहे हैं मैम, तो लीडर में मैं चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है कि चाय वाला है, चाय बेचता है, एंड आदित्य योगीनाथ जी की भी मैं बात करूँ तो उन्हें कहा गया था कि मंदिर में जाके घंटी बजाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, राजनीति में आपका कोई काम नहीं है. तो एक बार ऐसा हुआ था कि वो इमोशनल काफ़ी हो गए, तो उनकी आंखों से आंसू भी निकल गए थे. लेकिन आज दोनों एज अ लीडर बहुत स्ट्रांगली पावरफुल लीड कर रहे हैं चीज़ों को, एंड नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट किया एज अ लीडर कि पूरे मतलब कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में हमारी कंट्री की वाहवाही होती है. तो इनके बारे में आप कुछ एग्जाम्पल सेट कीजिए.
आई एम जस्ट नोबडी to represent anything about them, but yes, I can appreciate. मैं appreciate कर सकती हूँ उनकी journey from whatever they were and what they have been now. कहाँ से कहाँ तक, आम से खास की journey को सराहना है हमारी, और हम तो proud feel करते हैं कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ के prime minister इतने emotionally aware, emotionally intelligent, एक सभी प्लेटफॉर्म पे ना काम नेचर होना एक आपके स्टेट ऑफ माइंड को दिखाता है. और मुझे लगता है स्ट्रेस की सिचुएशन में अगर आप उस काम को मेंटेन कर पा रहे हो और उस काम एनर्जी के साथ आप एक अच्छी डिसीजन मेकिंग करते हो, तो डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप हाथ में हाथ लेके चलते हैं, राइट? तो मोदी जी के जितने भी डिसीजंस हैं पिछले कई सालों में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने देश की रूपरेखा को बदला है, राइट?
आई एग्री.
पहले इंडियंस को पहचाना नहीं जाता था, अब तो किसी भी देश में जाओ आपका ये कहना है कि आप इंडियन हो, आपको अलग से रिस्पेक्ट दिलवाता है. तो वो कैसे हुआ? कहीं ना कहीं वो चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका मोदी जी का. प्रेजेंट कब कर पाते हैं आप? जब आप अवेयर होते हैं. और अवेयर कब होते हैं? जब आप इमोशनल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक साक्षात एग्जांपल हैं।
तो ऐसे में लोगों की बातों को अवॉइड करना कितना मुश्किल होता होगा मैम?
मुझे लगता है जो लोग अपने गोल को पर्पस को लेके चलते हैं ना, तो उनको ये बातें सुनती भी नहीं है, क्योंकि उनके रास्ते में कई छोटे छोटे पत्थर आते हैं जिनको वो ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते। गोल बड़ा है, एनर्जी पूरी लगाई हुई है, तो ये छोटी मोटी परेशानियां तो उस जर्नी का पार्ट है। और जो इंसान इस पोजीशन पे पहुंचता है उसको ये पता होता है कि फल लगे हुए पेड़ पे ही
पत्थर
पड़ते हैं, राइट? तो
पड़ेंगे।
क्रिटिक्स उसी को मिलते हैं जो काम करता है, जो कुछ करेगा ही नहीं तो उसको क्रिटिसिज्म कहाँ से मिलेगा। और जब दुनिया सराह रही है और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, राइट, तो आपके रिजल्ट इतने बढ़िया आपकी हार्डवर्क को दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छे लीडर का एग्जांपल, एक इमोशनली इंटेलिजेंट एम्पावर्ड लीडर का एग्जांपल नरेंद्र मोदी जी और योगीनाथ जी हैं, जिन्होंने
योगीनाथ जी की अगर मैं बात करूं तो जब एक बार वो रो पड़े थे, जब उनका उनका इतना ज्यादा मजाक उड़ाया गया वो रो दिए थे, लेकिन आज के टाइम में वो यूपी के गुंडों को रुला रहे हैं। तो इसके बारे में
तो मुझे लगता है उन्होंने अवेयर होके सही समय का, सही डिसीजन मेकिंग का साथ लेते हुए, अपने सेल्फ अवेयरनेस के साथ अपनी उस स्टेट के लोगों के माइंडसेट को समझते हुए सही डिसीजन, जो कि डिसिप्लिन वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ यूपी, राइट, तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर काम किया और इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजीज बनाई कि चाह के भी वो फूल प्रूफ हैं, फेल्योर तो हो ही नहीं सकता। और यही एग्जांपल है कि इतने समय में बार बार वो इलेक्ट हो रहे हैं और बार बार वो उस स्टेट को और नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे हैं। दैट स्पीक्स लाउडर कि उनको पता है उनको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और ये इमोशनली अवेयर पर्सनालिटी ही कर सकती है। तो एक इमोशंस, तो मुझे लगता है इमोशनल इंटेलिजेंस इज बेस। आप सोचो ना, पहले लोग आईक्यू की बात करते थे, इंटेलिजेंट कोशेंट की, आज ईक्यू की बात कर रहे हैं, इमोशनल कोशेंट की। हर कंपनी आज की डेट में जब एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करती है तो वो उसके मार्क्स, इंटेलिजेंस, उसके प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ साथ उसके इमोशनल कोशेंट को भी जानती है, क्योंकि लोगों को टीम प्लेयर चाहिए। आज की डेट में अकेला एक इंसान काम करने वाला कंपनी को वो रिजल्ट नहीं दे सकता जो एक टीम में काम करने और करवाने वाला दे पाता है। और टीम वर्क वही कर पाएगा जो इमोशनल, जिसका कोशेंट हाई होगा। तो कंपनियों को ऐसे लोग चाहिए, चाहे नंबर थोड़े कम हो जाएं, बट वो इमोशनली एम्पावर्ड हो, अवेयर हो, उनको पता हो कि हमें अपनी इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, किस
सिचुएशन में कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है।
और एम्पथी और रेजिलेंस दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। एम्पथी, दूसरे की सिचुएशन को समझना, और रेजिलेंस इज बाउंस बैक। जीवन है तो कर्व है, कोई भी चीज ऊपर नहीं रह सकती और कोई भी चीज हमेशा नीचे नहीं रह सकती, तो ऊपर आए तो नीचे जाना है और नीचे से ऊपर उठना है। जिसको ये समझ आ गया वो बाउंस बैक इज रेजिलेंस, और ये इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है।
जैसे कि मैम, मैंने वीडियो में कहा था कि हर किसी में इमोशंस होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन वो कोई एग्रेशन में निकालता है, कोई रो के निकालता है। तो इसमें दो एग्जांपल्स मेरे माइंड में भी क्लिक कर रहे हैं, एक विराट कोहली एंड एक धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। तो आप इनके बारे में क्या कहेंगी?
दोनों ही बड़े रिस्पेक्टेबल क्रिकेटर्स हैं हमारे कंट्री के, और मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर के साथ में विनोद कांबली जी ने मतलब कांबली साहब ने खेला है, और बट आज की सिचुएशन वैसी नहीं है। बहुत अग्रेसिव रहे हैं
कांबली साहब,
और कहीं ना कहीं उनकी बहुत अच्छी क्वालिटीज के साथ ये एक छोटा सा नेगेटिव फैक्टर उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी लेके आया, क्योंकि एग्रेशन एक लेवल तक ही सही होता है।
एग्रेशन की अगर आप उनकी बात करें, तो मैंने पढ़ा है उनके बारे में कि उनकी दो मैरिजेस हुई थी और दोनों वाइफ्स ने उनपे हाथापाई का आरोप लगाया, तो ये कहीं ना कहीं एग्रेशन EI से कनेक्टेड कर सकते हैं इसे हम?
एग्रेशन इमोशनली वीक लोगों की पहचान है। गुस्सा कब आता है? जब आप अपनी इमोशंस और सामने वाले की इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, और वो गुस्सा
खुद पे कंट्रोल नहीं,
सेल्फ रेगुलेशन वाला। तीन चीजें मैंने बताई इमोशनल इंटेलिजेंस में कारगर हैं। पहला है इमोशनल अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, और तीसरा एम्पथी, और चौथा रेजिलेंस। ये चारों चीजों का बैलेंस जिस इंसान में है वो एक बैलेंस पर्सनालिटी है सोसाइटी की। और जो भी इनमें से किसी एक में भी चूकता है, अपने आप को नहीं समझा और दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश की तो एंगर एंजाइटी आएगी आएगी। कामली साहब का ये वाला पार्ट थोड़ा सा उनके ऊपर हावी हो गया, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं और अब तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो कोचिंग करने के बाद, कमेंट्री करने के बाद कुछ भी काम करने को तैयार हैं, एनी काइंड ऑफ वर्क, बिकॉज फाइनेंशियल बहुत सारे सेटबैक्स उन्होंने फेस किए। पैरली अगर महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल लें तो उनकी वो काम नेचर और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में कभी हिचकिचाए नहीं, और मुझे लगता है रोना बुरा नहीं है, मुझे लगता है कई बार
वर्ल्ड कप के टाइम में उन्हें रोता हुआ देखा भी है।
हाँ, तो इसी वो वर्ल्ड कप का टाइम देखिए, वो इमोशन वेंट आउट होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप अपना सर्वस्व लगा देते हो एक गोल को अचीव करने के लिए, और जब वो अचीव होता है तो वो खुशी के आंसू भी हो सकते हैं, रोना हमेशा उदासी की पहचान या नेगेटिव एनर्जी की नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं है
जी।
तो वो खुशी के आंसू थे। अभी रिसेंट एक एग्जाम्पल मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूंगी, गुकेश का, जिन्होंने सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल किया और हमारे देश को प्राउड फील कराया। मैंने उनके कुछ साल पहले की वीडियोस भी देखी और मेरा खुद का बेटा बता रहा था कि वो कोरा पे कई बार उनसे उस उन सेम एज के हैं तो कभी कई साल पहले कहीं ना कहीं उसके जो रिव्यूज को पढ़ा, कनेक्ट किया, तो कई साल पहले उसने ये माना था कि मुझे यंगेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनना है, सपना देखा, सपने के लिए राइट डायरेक्शन में एनर्जी लगाई, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने उनके फादर ने अपना करियर छोड़ के अपने बच्चे को अप बिल्ड करने के लिए पूरा सर्वस्व लगा दिया, मम्मा ने पूरा सपोर्ट बैकएंड से मॉरली किया। और अगर गुकेश की आप वो मैच की वीडियो देखें तो लास्ट वन मूव, एक मूव अगर वो सही नहीं होती तो शायद जो आज वो चैंपियनशिप है वो नहीं मिल पाती।
बिल्कुल।
और वो एक मूव इमोशनल हाई कोशेंट का रियलिस्टिक एग्जाम्पल है, ऐसे प्रेशर में जब इतना प्रेशर हो कि अगर ये हुआ तो लाइन के उस पार, ये नहीं हुआ तो लाइन के इस पार, एक क्लियर इंडिकेशन देता है आपको, अगर आप इमोशनली वीक हो तो आप वहां कोलैप्स कर जाते हो, बट आप इमोशनली स्ट्रांग थे, आपने अपनी उन इमोशंस को, उस डर को अपने ऊपर हावी
नहीं
होने दिया और अपने स्टेट ऑफ माइंड को बैलेंस रखा, और वो बैलेंस अप्रोच से आपने उस राइट मूव को आइडेंटिफाई किया और एक मूव करते ही आप विश्व के यंगेस्ट
वर्ल्ड
चैंपियन बन गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गए, आपने पूरे फैमिली को नहीं अपने देश को प्राउड फील कराया। तो ये इमोशनली एम्पावर्ड, इमोशनली अवेयर, इमोशनली एम्पावर्ड का मतलब इगोइस्टिक होना नहीं है, इमोशनली एम्पावर्ड का मतलब है सेल्फ को जानना, अपने आप को समझना, अपने ऊपर कंट्रोल होना और दूसरे को, दूसरे की सिचुएशन को समझना, और रिस्पेक्ट अगर चाहिए तो रिस्पेक्ट को देना।
बिल्कुल।
ये सब और गुकेश, वी आर प्राउड ऑफ यू, यू हैव brought laurels to the country by your right emotional state of mind and your hard work in learning and actively playing this game, aur aapki effort, aapke hard work ko pura desh sarah raha hai, aur aise hi hard work ko agar sahi balance mil jata hai emotional mindset ka to success stories create hoti hain।
Bilkul ma'am। एंड मैम, कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपको काफ़ी ज़्यादा आप इम्पैक्ट हुए उससे, जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ?
अब अगर